आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ दो, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकंड का परशुराम और राम लक्ष्मण संवाद। तो जब सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम धनुष को, शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं और तब परशुराम जी को जो क्रोध आता है तो वो बड़े गुस्से में वहां सभा में पहुंचते हैं और उस दौरान लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हमने ये पूरा पाठ पढ़ लिया था, बाकी थे इसके प्रश्न उत्तर। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले आप पेज नंबर 14 पर आ जाइए, ठीक है? तो यहाँ पेज नंबर 14 पर पहला प्रश्न दिया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर में आप लिखेंगे, लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने पर ये तर्क दिए। उन्होंने कहा कि हमें तो ये असाधारण धनुष भी साधारण धनुष की ही तरह लगा, ठीक है? पहली बात कि उन्होंने इस धनुष को भी साधारण माना। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि राम जी ने धनुष जानबूझकर नहीं तोड़ा है, बल्कि राम जी के छूते ही ये धनुष अपने आप टूट गया, ठीक है? राम जी के छूते ही अपने आप टूट गया। और इस धनुष को तोड़ते समय हमें किसी भी तरह की लाभ या हानि, फायदे या नुकसान के बारे में नहीं पता था। ऐसे कई धनुष मैंने और मेरे भैया श्री राम ने बचपन में ही खेल खेल में तोड़ दिए थे, तो वही सब सोचकर यह धनुष भी मुझसे टूट गया, ठीक? इस तरह से आप कुछ तर्कों का विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। अब प्रश्न दो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो जब परशुराम जी ने क्रोध किया तो श्री राम भगवान बहुत ही शांत रहे, है ना? वो उन्होंने धैर्य से काम लिया, उन्होंने विनम्र वचनों को कहके श्री राम जी के क्रोध परशुराम जी के क्रोध को शांत करने की कोशिश की। इसीलिए जब परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जल रहे थे तो राम जी की वाणी उन पर शीतल जल के छींटों की तरह पड़ी, और यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया और उनके लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपने जो उनकी विनम्र स्वभाव था, जो वाणी की कोमलता थी, मधुरता थी, उसे नहीं छोड़ते थे। जबकि लक्ष्मण जी भी परशुराम की तरह ही क्रोधी स्वभाव के हैं। उसके साथ ही जिस तरीके से वो बात करते हैं तो पता लगता है कि वो निडर भी हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। साथ ही वो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना? और परशुराम जी जो क्रोध के कारण अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय को भी लक्ष्मण नहीं सहते हैं। तो इन सब बातों से हम क्या बता सकते हैं, राम जो हैं वो बहुत ही शांत, विनम्र, मधुर बोलने वाले, बुद्धिमान और धैर्यमान व्यक्ति हैं, ठीक है? वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण क्रोधी, निडर, साहसी और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति हैं। दोनों के ही गुण अपनी अपनी जगह पे उच्च स्थान पर हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 15 पर। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली कौन सी होती है? जहां आप दोनों के संवाद यानी दोनों के डायलॉग्स को एक एक करके दोनों के डायलॉग्स को एक एक करके लिखते हैं। जैसे हम शुरू वाला हिस्सा लेते हैं जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि यह धनुष हमारे लिए साधारण है और ऐसे ही कई धनुष हमने बचपन में खेल खेल में तोड़ दिए हैं। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, हे ऋषि, हमने बालपन में अपने बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, तो इस धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अब परशुराम क्या जवाब देते हैं, हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है, क्या तुम्हें नहीं पता यह शिवजी का धनुष है, यह असाधारण है, इसीलिए मुझे इसके टूटने पर क्रोध आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप संवाद को लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको अर्थ बताया था वैसे वैसे ही। अब प्रश्न चार देखिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अतिकोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितहि जन सोच बस करसी महीस किशोर, गर्बन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। तो इस जो पद्यांश आपको दिया है इसके आधार पर आपको बताना है परशुराम के बारे में जानकारी कि उन्होंने क्या अपने बारे में बताया, क्या परिचय दिया। तो आप लिखेंगे, परशुराम जी ने बताया कि वो ब्रह्मचारी हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में वो क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, यानी क्षत्रियों को नष्ट कर दिया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। अपने हाथ में जो उन्होंने फरसा धारण कर रखा है वो बताते हैं कि उससे उन्होंने सहस्रबाहु की बाहों को भुजाओं को भी काट डाला था, इसीलिए हे नरेश पुत्र यानी राजा के पुत्र, तुम इस फरसे को भली भांति देख लो, क्योंकि अब इससे अगर मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, इससे अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे माता पिता को बहुत कष्ट होगा, क्योंकि मेरा ये फरसा ऐसा है जिसकी भयानकता से गर्भ में पल रहे शिशु भी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई कि जो वीर योद्धा या पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का स्वयं बखान नहीं करते हैं, उनकी वीरता उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से दिखती है। दूसरा देखिए, जो वीर पुरुष होते हैं वो कभी अभिमान या घमंड नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बताया, वीर पुरुष धैर्यवान होते हैं, वीर पुरुष किसी के लिए भी अपशब्द, गलत शब्द या गाली का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि सबको सम्मान देते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो दीनहीन यानी कमजोर ब्राह्मणों, गायों और दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्हें मारना वीरता का प्रदर्शन नहीं बल्कि पाप है। आगे वो ये भी बताते हैं कि वीर पुरुषों को अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, और वो कहते हैं कि कोई अगर आपको ललकारे तो आप पीछे ना हटें बल्कि वीरता से उसका सामना करें। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए, कोई भी अगर वीर व्यक्ति होता है तो साहस और शक्ति जैसे गुण उसके पास होते हैं, है ना। क्योंकि अगर साहस आपके पास है, हिम्मत है, तो शक्ति भी आपके पास आ ही जाएगी। लेकिन इन सब के कारण अगर ये बहुत अधिक हिम्मत और बहुत अधिक शक्ति आप में हो जाए तो कहीं ना कहीं आप घमंडी हो जाते हैं, उद्दंड हो जाते हैं, है ना। बेमतलब का आपको अभिमान होने लगता है। इसीलिए इन गुणों के साथ अगर विनम्रता भी आ जाती है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर हो जाता है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता जो होती है वो हमेशा हमें हर स्थिति में शांत रखती है, है ना। हमारी वाणी को मधुर रखती है, हमारे वचनों को शीतल रखती है। जैसे परशुराम जी जो हैं वो साहस और शक्ति का संगम है, लक्ष्मण भी साहसी हैं, शक्तिशाली भी हैं। लेकिन जो भगवान राम हैं वो साहसी भी हैं, शक्तिशाली भी हैं, साथ ही विनम्र स्वभाव के भी हैं। और इसी विनम्र स्वभाव के कारण आखिरकार परशुराम जी का अहंकार भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लक्ष्मण जैसा व्यवहार ही राम करते तो इससे परशुराम जी का क्रोध कभी शांत नहीं होता। वो राम जी की विनम्रता ही थी कि वो परशुराम को शांत कर पाए। प्रश्न 7 देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। अब आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इसके भाव आपको स्पष्ट करने हैं, एक तरह से व्याख्या आपको करनी है। तो पहले क देखते हैं। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महामटमानी, पुनि पुनि मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। ठीक है, तो जब आपको इसका भाव लिखना होगा तो पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग में संदर्भ, प्रसंग और फिर भाव या व्याख्या। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में जब परशुराम जी लक्ष्मण को अपशब्द बोलते हैं तो लक्ष्मण जी उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, अब आता है इसका भाव या व्याख्या। उसमें आप क्या लिखेंगे, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं, मुनि, हे मुनिवर, आप तो अभिमान के वश में यानी कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं। आप कहते हैं आप इस संसार के श्रेष्ठ योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, और अपना फरसा दिखा दिखा कर मुझे डरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो, है ना। मतलब जैसे कोई फूंक मार के पहाड़ नहीं उड़ा सकता, वैसे आप मुझे बालक समझ के डरा नहीं सकते, है ना। आप ये मत समझिए कि मैं इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। ऐसे ही अगली है, इहा कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें भी संदर्भ आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस से ली गई हैं। प्रसंग आएगा, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम के अपशब्दों का उत्तर दे रहे हैं। और इसका भाव या व्याख्या आप लिखेंगे कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहते हैं कि हमें कोई कुमड़बतिया ना समझिए कि आपकी तर्जनी उंगली दिखाकर हम मुरझा जाएंगे। ठीक है, कुमड़बतिया का फूल मत समझिए कि हम एक उंगली देखने से मुरझा जाएंगे। मैंने आपके फरसे को और धनुष बाण दोनों को अच्छी तरह से देख लिया है। हम कोई कोमल पुष्प नहीं हैं जो छूने से मुरझा जाएं। हम बालक दिख रहे हैं लेकिन हम बहुत बहादुर हैं। हमने भी बहुत धनुष बाण देखे हैं, इसलिए आप हमें बालक समझ के डराने का प्रयास ना करें। अगली देखिए, गादिसु ना कह हृदय हसी मुनि है, हरियरी सूज, आय मैं खोड़ न ऊख मैं, अजौ न बूज अबूज। तो संदर्भ इसका भी वही रहेगा, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र जी परशुराम के वचनों को सुनकर और उनकी बुद्धि पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। ठीक है, और इसका भाव या अर्थ में आप लिखेंगे कि विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में मुस्कुराते हैं और परशुराम जी को देखकर, उनकी बातों को सुनकर ये सोचते हैं कि परशुराम जी को तो अपने अभिमान के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये चारों ओर हरा हरा ही देख रहे हैं। इसीलिए ये राम और लक्ष्मण दशरथ के इतने महान पुत्रों को भी साधारण बालक समझ रहे हैं, जिन्हें ये गन्ने की खाड़ जैसे समझ रहे हैं कि तुरंत उखाड़ देंगे, वे तो वास्तव में लोहे से बनी तलवार की तरह मजबूत हैं। यानी कि भगवान राम और लक्ष्मण बहुत ही महान बहादुर और शक्तिशाली हैं, लेकिन परशुराम जी ये नहीं जानते और वो इन्हें कमजोर समझ के अपने क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आगे आइए अब प्रश्न संख्या 8 पर। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, आपको 10 पंक्तियां लिखनी है इनके भाषा सौंदर्य के आधार पर। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखाएंगे, बताएंगे कि ये भाषा है कौन सी, मतलब कौन सी भाषा में रामचरितमानस की रचना की गई है। तो हम लिखेंगे तुलसीदास जी ने यह रचना अवधी भाषा में की है। यह जो पद्यांश यहाँ दिया गया है, यह रामचरितमानस के बालकंड से लिया गया है। दो हो गई पंक्तियां। तीसरी लिखेंगे, यहाँ पे हमें अवधी भाषा का बहुत ही शुद्ध और परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है। तीन पंक्तियां। चौथी लिखेंगे, तुलसीदास जी ने इसमें दोहा और चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। ठीक है, पांचवा लिखेंगे, भाषा लयबद्ध होने के कारण काव्य का सौंदर्य और आनंद बढ़ा देती है। भाषा लयबद्ध होने के कारण काव्य का सौंदर्य और आनंद बढ़ा देती है। अगला लिखेंगे, तुलसीदास जी ने इसमें अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर व सटीक प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने इसमें अलंकारों का भी बहुत ही सुंदर व सटीक प्रयोग किया है। आगे, इसकी भाषा संगीतात्मक भी है, यानी इन पदों को गाया भी जा सकता है। ठीक है, तुलसी जी की भाषा में मुख्य रूप से अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, अलंकार मिलता है। नौवां आप लिखेंगे, यहाँ पर तुलसीदास जी ने व्यंगात्मकता का भी सुंदर वर्णन किया है। और आखिरी लाइन में आप लिखेंगे, तुलसीदास जी की भाषा इतनी स्पष्ट है कि आंखों के सामने पूरा प्रसंग का चित्र उभर कर आ जाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 9। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो आपको बताना है कि इसमें व्यंग का सौंदर्य कैसे दिखता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये पूरा का पूरा प्रसंग ही व्यंग है। उदाहरण के लिए हम कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे शुरू में लक्ष्मण जी ने कहा, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असे रिस की ने गुसाई। यानी कि वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो आपने या किसी भी ऋषि ने हम पर क्रोध नहीं किया। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। दूसरा, जब वो वाली पंक्ति आती है जो विश्वामित्र जी हंस रहे हैं परशुराम के स्वभाव पे, गादिसु नु कह हृदय हसी मुनि हरि हरि सूज, आई मैं खाड़ न ऊख में अजौ न बूझ अबूज। यहाँ पर विश्वामित्र जी जो हैं वो परशुराम जी को देखकर हंसते हैं और व्यंग करते हुए सोचते हैं कि ये अपने क्रोध के आगे राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। जैसे सावन के अंधे को हर समय हरा ही हरा दिखता है, वैसे ही इन्हें भी हर चीज अपने हिसाब से दिख रही है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये बालक कितने महान और शक्तिशाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आप वो वाली लाइन लिख सकते हैं, मात पिता ही जन सोच बस करस महीस किशोर, गर्बन के अर्बक दलन परसु मोर अति घोर। यहाँ पे परशुराम जी क्रोध में आकर जब लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए शोक करेंगे, सोच में डूब जाएंगे, शोक करेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तुम जानते नहीं हो मेरे परसे को, मेरे क्रोध को इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी इससे नष्ट हो सकता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। यहाँ जो पंक्तियां दी गई हैं उसमें आपको अलंकार पहचानने हैं। पहला पंक्ति पढ़ती हूँ, बालकु बोली बदहु नहीं तो ही, यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब जो वर्ण है उसकी बार बार वो आवृत्ति हुई यानी रिपीट हुआ है ना, बालकु बोली बदहु ब ब ब, तो यहाँ पे अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अगली पंक्ति, कोटि कुलेश सम बचन तुम्हारा, यहाँ पे दो अलंकार हैं। पहला अनुप्रास है क्योंकि क आया है, कोटि और कुलेश दोनों में क क बार बार रिपीट हुआ, और उपमा क्योंकि कलिस सम बचनु, यहाँ पे उन्होंने कैसा बताया है, परशुराम जी के वचनों को कठोर बताया है, कैसा, वज्र के समान। तो ये उपमा दी गई है, परशुराम के वचनों को, परशुराम के शब्दों को वज्र की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अगली पंक्तियां देखिए, तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहे लागे बुलावा, तो यहाँ पे पहला है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे काल हाक जनु लावा क्योंकि जो जनु है वो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है क्योंकि बार बार, एक ही शब्द को जब दो बार लिख देते हैं तो वहां पुनरुक्ति अलंकार हो जाता है, है ना, एक ही शब्द दो बार बार बार। अगली पंक्तियां देखिए, लखन उतर आहुति सरसे भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, यहाँ पे कौन कौन से अलंकार हैं, उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है, उत्तर आहुति सरस भृगुवर कोपु कृसानु, इसमें उपमा अलंकार है। जलसम वचन, इसमें भी उपमा है क्योंकि भगवान राम के जो वचन है उन्हें ठंडे जल की तरह बताया गया है। रूपक अलंकार भी है क्योंकि रघुकुल भानु, यहाँ पे उन्हें रघुकुल का सूर्य बताया गया है ना, यानी श्री राम जी की सूरत से तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार भी हो जाता है। आगे देखिए, रचना और अभिव्यक्ति, है ना, इसमें प्रश्न 11 क्या दिया है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, अपने आप कक्षा में दो समूह बना सकते हैं, आधे बच्चे एक समूह में, आधे एक, तो आधे बच्चे बोलेंगे कि क्रोध कैसे सकारात्मक हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, वहीं दूसरा जो समूह है वहां आप बताएंगे कि क्रोध कैसे नकारात्मक हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है, लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है, आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप भी लक्ष्मण की तरह व्यंग करते तो आप वो बताएंगे, परशुराम जी की तरह क्रोध करते तो वो बताएंगे, और राम जी की तरह शांत रहते तो वो बताएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सकारात्मक उत्तर लिखें कि हम भी भगवान राम की तरह विनम्र और शांत रहने का प्रयास करते ताकि हमारे सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ रहा है वो क्रोध शांत हो सके। ठीक है, प्रश्न 13 देखिए, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। आपका कोई खास व्यक्ति हो जो बहुत ही क्रोधी हो या बहुत ही शांत हो, बहुत विनम्र हो, तो उसके स्वभाव के बारे में यहाँ आपको लिखना है। ठीक है, अगर आपके कक्षा में कोई बहुत अच्छा मित्र है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखिए। अब आपको एक कहानी लिखनी है जिसमें आपको बताना है कि दूसरों की क्षमताओं को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से कोई भी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझा देती हूँ। जैसे एक बार एक शेर था, तो उसने खाने के लिए चूहा पकड़ा और चूहे ने कहा कि मुझे आप छोड़ दीजिए, अगर आप मुझे आज छोड़ देंगे तो मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। तो शेर हंसने लगता है, कहता तुम इतने छोटे से चूहे तुम मेरे किस काम आ सकते हो। तो वह कहता है मेरा यकीन तो कीजिए, मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा। तो ये सुन के शेर आखिर उसे छोड़ देता है। उसके कुछ ही दिन बाद शेर जो होता है जंगल में लेटा होता है अपनी गुफा में, लेकिन एक शिकारी आता है और उस पे जाल में उसे फंसा लेता है। अब शेर बड़ा परेशान होता है। तभी चूहा देखता है कि मेरा जो शेर है वो फंसा हुआ है, तो वो जाता है और अपने दांतों से उसका जाल काट देता है। और तब शेर को ये एहसास होता है कि हमें दूसरों की क्षमताओं को वाकई में कभी कम नहीं समझना चाहिए, किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, एक या तो ये कहानी या कोई और कहानी आप अपनी ओर से लिख सकते हैं। प्रश्न 15 देखिए, उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। आप ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई घटना अपने जीवन की याद कीजिए जब आपने कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई हो, आपने कहा हो कि ये चीज सही नहीं है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई प्रसंग याद करके आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। आपको याद करना है कि अवधि भाषा किधर बोली जाती है, तो आप लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ये अवधि भाषा लिखी बोली जाती है, खासकर अयोध्या वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब है पाठेतर सक्रियता। तुलसी की अन्य रचनाएं पुस्तकालय से लेकर पढ़ें, अगर आपके पुस्तकालय में उपलब्ध हो तो वहां से, नहीं तो आजकल इंटरनेट की मदद से भी आप तुलसी जी की और रचनाओं को पढ़ सकते हैं। दोहा और चौपाई के वचन का एक पारंपरिक ढंग है, लय सहित इनके वचन का अभ्यास कीजिए। ठीक है, आपको गा के देखने हैं ये, जैसे मैं आपको इसका जो शुरुआत है वो थोड़ा सा गा के दिखा देती हूँ। देखिए जो पहला पद है, नाथ संबधनु भंज निहारा, ओएक दास तुम्हारा, ऐसे करके हम ये जो चौपाई और दोहा होते हैं उसे गा सकते हैं। इसी लय में आप पूरी चौपाई गाएंगे और बाद में ये जो दोहा आते हैं उसे आप कैसे बोलेंगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहे न संभार, धन हृदम त्रिपुरा दिनु बितुत सकल संसार। ठीक है, तो ये आपको इसके लय में अंतर बताना है, आप भी गाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब कभी आपको पारंपरिक रामलीला अथवा रामकथा की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला होगा, उस अनुभव को अपने शब्दों में लिखिए। दशहरे के आसपास अक्सर हमारे देश में कई जगह रामलीला का आयोजन किया जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा से कहकर एक बार उसे जरूर देखिए, और देखा है तो आपको कैसा महसूस हुआ अपने अनुभव आप लिखेंगे। अगला, इस प्रसंग की नाट्य प्रस्तुति करें, यानी आपको एक तरह से नाटक करना है। एक व्यक्ति परशुराम बनेगा, एक राम, एक लक्ष्मण, एक विश्वामित्र जी और कुछ बच्चे बाकी जो सभा में बैठे राजा महाराजा मंत्रीगण वो सब बनेंगे, एक राजा जनक बनेंगे, ऐसे करके आपको एक नाटक तैयार करना है। ठीक है, अब है शब्द संपदा यानी शब्दार्थ। भंज निहारा यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला, रिसाई यानी क्रोध करना, रिपु यानी शत्रु, बिलगाव यानी अलग होना, अवमाने यानी अपमान करना, लरिकाई यानी बचपन में, परसु यानी फरसा कुल्हाड़ी की तरह एक अस्त्र, कोही यानी क्रोधी, महिदेव यानी ब्राह्मण, बिलोक यानी देखकर, अर्भक यानी बच्चा, महाभट यानी महान योद्धा, मही यानी धरती, कुठारू यानी कुल्हाड़ा, कुमड़बतिया यानी काशी फलिया बहुत ही कोमल फूल कोई। ठीक है, तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली जो हमारी पहली उंगली होती है ना वो, कुलिस यानी कठोर, सरोश यानी क्रोध सहित, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा जाता है, भानुवंश यानी सूर्यवंश, निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश ना हो, दबाव ना हो। ठीक है, असंकु शंका रहित, घालकु नाश करने वाला, काल कवलु जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो या मृत होने वाला हो, अबुदु ना समझ, खोरी दोष, हटके है मना करने पर, अचोबा शांत धीर जो घबराया ना हो, बदजोगु मारने योग्य, अकरुण जिसमें करुणा ना हो, गादी सुनु गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र, अयमय यानी लोहे का बना हुआ, नेवारे यानी मना करना, ऊखमय गन्ने से बना हुआ, कृषाणु अग्नि। यह भी जाने। आपको जानकारी आपको दी गई है दोहा। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है जिसकी पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहली तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरी चौथी में 11 मात्राएं, यानी 13-11 13-11 ऐसे। चौपाई, मात्रिक छंद चौपाई 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तुलसी से पहले सूफी कवियों में अवधि भाषा में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत उल्लेखनीय है। अगले पेज पर आइए, पेज नंबर 18 पर परशुराम और सहस्रबाहु की कथा आपको दी गई है, जो उन्होंने बार बार बताया ना परशुराम जी ने कि मैं मुझे क्रोध आता है, मैंने सहस्रबाहु की भुजाओं को भी तोड़ डाला था, वो वाली कथा असल में क्या थी वो आपको यहाँ पे दी गई है। पाठ में सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा का कई बार उल्लेख आया है, यानी परशुराम और सहस्रबाहु के बैर की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत के अनुसार यह कथा इस प्रकार है। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। एक बार राजा कार्तवीर सहस्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो विशेष गाय थी, कहते हैं वह सभी कामनाएं पूरी कर देती थी। कार्तवीर सहस्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। ऋषि द्वारा मना किए जाने पर सहस्रबाहु ने कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। इस पर क्रोधित हो परशुराम ने सहस्रबाहु का वध कर दिया। इस कार्य की ऋषि जमदग्नि ने बहुत निंदा की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्रबाहु के पुत्रों ने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर पुनः क्रोधित होकर परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ ही आपका ये पाठ पूरा होता है। मिलते हैं अगले ऑडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।